नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति समझौते के लिए अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शरणार्थियों को पूर्ण संवैधानिक अधिकार मिलेगा और घुसपैठी बाहर निकाले जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में पंजीकृत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 2030 तक पथ कर और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। भारत में डिजिटल भुगतान यूपीआई के 10 वर्ष पूरे और आयुष शेट्टी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता हो रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी दल इस्लामाबाद में है। एक रिपोर्ट।
श्री वेंस ने पाकिस्तान रवाना होने से पहले कहा कि अगर ईरान भरोसे के साथ बातचीत में शामिल होता है तो अमरीका सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन अगर ईरान शर्तें थोपना चाहेगा तो अमरीका इसे स्वीकार नहीं करेगा। बैठक में ईरान का प्रतिनिधित्व संसद के स्पीकर बागेर खलीबाफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति पर अमल होना बाकी है। दोनों पक्षों के बीच ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल विकास कार्यक्रम तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बातचीत होनी है। ईरान ने 10 सूत्री मांगे रखी हैं, जिनमें हॉर्मूज पर नियंत्रण, खाड़ी क्षेत्र के अमरीकी अड्डों से सैनिकों की वापसी और लेबनान में हिजबुल्ला पर इसराइल के हमले को रोकना शामिल है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट की विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात उपयोगी रही। ये बैठक शांति विधेयक को भारत में पारित किए जाने के मद्देनजर हुई है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा ढांचे का आधुनिकीकरण करना, सुरक्षा मानकों में सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के अवसर सृजित करना है। श्री गौर ने शांति विधेयक को भारत की ऊर्जा नीति में मील का पत्थर बताया। श्री गौर ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा सहित सुरक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री कल से 3 दिन के दौरे पर फ्रांस और जर्मनी जा रहे हैं। वे पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रियंस के साथ भारत फ्रांस विदेश कार्यालय परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों पक्ष ताजा वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी चर्चा करेंगे। बर्लिन में श्री मिश्री जर्मनी के विदेश सचिव गेजा एंड्रियास वॉन गेयर के साथ भारत जर्मनी विदेश कार्यालय परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, शरणार्थियों को सभी संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे और घुसपैठियों को निकाला जाएगा। आज पश्चिम बंगाल के कटवा में एक रैली में उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर नागरिकता कानून के अंतर्गत पात्र आवेदकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
यहाँ बीजेपी सरकार बनते ही शरणार्थी परिवारजनों को CAA के तहत नागरिकता देने का काम और तेज किया जाएगा। बीजेपी सरकार बंगाल को एक और बड़ी चुनौती से मुक्ति दिलाएगी। जो भारत में घुसपैठ करके आया है उसको भारत से खदेड़ा जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के ओंडा में कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट राज ने राज्य को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के युवाओं को राज्य से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अन्य राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों पर हमलों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने बंगाल को विभाजित करने की साजिश रची है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। 142 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1463 पत्रों को वैध घोषित किया गया है। नामांकन 13 अप्रैल तक वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु के गृह सचिव धीरज कुमार का तबादला कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने मणिवासन को तमिलनाडु का नया गृह सचिव नियुक्त किया है। विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल की हमारी श्रृंखला में आज हम तमिलनाडु की विलावनकोड विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं। तमिलनाडु में एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।
कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य के लिए विशेष महत्व रखता है। ये जिला अपनी विशिष्ट भौगोलिक बनावट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रबर और काजू के पेड़ों की हरियाली, केले की खेती तथा शहद उत्पादन प्रमुखता से होते हैं। ये जिला 96% साक्षरता दर के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी है। चुनाव के दृष्टिकोण से विल्लावनकोड विधानसभा क्षेत्र का खास महत्व है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विजय धारिणी को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से 3 बार जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने एक नए चेहरे टीटी प्रवीण को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ कमिलगा वेट्री कसगम ने के माइकल राज को मैदान में उतारा है। कन्याकुमारी में कुल मतदाताओं की संख्या 15,10,550 है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
विधानसभा की 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल तथा गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को मतदान होगा। सभी चुनावों और उपचुनावों के वोटों की गिनती 4 मई को होगी। असम में श्रीभूमि जिले में करीमगंज उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बेबीलैंड हाई इंग्लिश स्कूल मतदान केंद्र पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। इस केंद्र पर कुल 599 मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग ने केंद्र पर 9 अप्रैल को इस मतदान को रद्द कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत में डिजिटल भुगतान UPI व्यवस्था के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले एक दशक में ये भारतीय भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वर्ष 2016 में UPI की शुरुआत की थी, जिसके जरिए भारत में वित्तीय लेनदेन के तरीके में मूल रूप से सरलता आई है। वर्ष 2021 में इस नेटवर्क से 216 बैंक जुड़े थे, जो अब बढ़कर जनवरी 2026 तक 691 बैंकों तक पहुंच गए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार वैश्विक रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में UPI की लगभग 49% हिस्सेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संस्थानों ने भी UPI की व्यापकता, दक्षता और समावेशिता की सराहना की है। UPI अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ते हुए संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर सहित कई देशों में संचालित हो रहा है। रोहन के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली में पंजीकृत 30 लाख रुपए तक की एक्स शोरूम मूल्य वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक पथ कर और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2030 तक के लिए जारी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मसौदे में ये बात कही। इस नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 3,900 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रियल एस्टेट डेवलपर अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों की तलाशी ली है। कल दिल्ली और गुरुग्राम में कंपनी के निदेशकों, प्रमोटरों और संबंधित संस्थाओं से जुड़े 10 परिसरों पर तलाशी ली गई। इस दौरान निदेशालय ने लगभग 6 करोड़ 30 लाख रुपए नकद और लगभग 7 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य की चांदी और महंगी घड़ियां जब्त की। ये जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की प्राथमिकी और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय की शिकायत के आधार पर की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कुछ अन्य के खिलाफ तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने कर्मचारी चयन आयोग भर्ती घोटाले के संबंध में आज कोलकाता में 2 परिसरों की तलाशी ली। पार्थ चटर्जी के आवास और प्रसन्ना कुमार रॉय के कार्यालय में तलाशी ली जा रही है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। प्राथमिक शिक्षकों, सहायक शिक्षकों और ग्रुप सी तथा डी कर्मियों की भर्ती से संबंधित कई मामलों में पार्थ चटर्जी के खिलाफ जांच जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 3 दिन के उन्नत कृषि महोत्सव का उद्घाटन किया। 13 अप्रैल तक चलने वाले इस महोत्सव में ड्रोन, सोलर पंप और सूक्ष्म सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। महोत्सव में विशेषज्ञ किसानों से सीधे संवाद करेंगे और कृषि में यांत्रिक मेधा यानी AI के उपयोग पर भी चर्चा होगी। महोत्सव में 300 से अधिक प्रदर्शक और कृषि वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। बेंगलुरु का केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जैव रसायन और हेमेटोलॉजी में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला संस्थान बन गया है। ये प्रमाण पत्र इस बात को प्रमाणित करता है कि संस्थान की प्रयोगशाला वैश्विक मानकों के अनुरूप है। संस्थान ने 50 परीक्षण मानकों पर राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त की है। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से आयुष प्रणाली की गुणवत्ता का प्रतीक बन जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि 345 भारतीय मछुआरे ईरान से आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित भारत पहुंच गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय मछुआरों को ईरान से सुरक्षित निकालने में सहयोग के लिए आर्मेनिया सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्र आज समाज सुधारक और महान जनसेवक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
1827 में आज ही के दिन जन्मे महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री फुले के साथ मिलकर महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज संसद परिसर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महात्मा फुले का महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान उल्लेखनीय रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि फुले ने अपना जीवन वंचितों के उत्थान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले का जीवन नैतिक साहस, आत्मनिरक्षण और सामाजिक कल्याण के प्रति अटूट समर्पण का एक प्रेरणादायक उदाहरण रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई सांसदों ने भी फुले को श्रद्धांजलि दी। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
श्री फुले की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि महात्मा फुले सामाजिक न्याय और महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। श्री नवीन ने कहा कि महात्मा फुले के विचार देश को एक समतावादी समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन कुणलावुत विदित सरन को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में आयुष का मुकाबला एक अन्य सेमीफाइनल के विजेता से होगा। ये सेमीफाइनल चीनी ताइपे के चाउ टीएन चेन और चीन के शी यू की के बीच होना है। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। प्रतियोगिता में कल राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति समझौते के लिए अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शरणार्थियों को पूर्ण संवैधानिक अधिकार मिलेगा और घुसपैठी बाहर निकाले जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में पंजीकृत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 2030 तक पथ कर और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। और आयुष शेट्टी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।